इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है,
तदहं ते विदास्यामि महापौरुषिको भवान् तस्य श्रद्धदधाम आशु स्यान् मुकुंदे मतिः सति। तदहं ते विदास्यामि, मैं आपको ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ परीक्षित महाराज, ये मत सोचिए कि मेरे पास करने के लिए दूसरा कुछ काम नहीं था, इसलिए मैं घूमता घामता यहाँ आ गया हूँ, समय बिताने के लिए नहीं। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ आकर आप पर अपनी विशेष कृपा क्यों बरसा रहा हूँ। महापौरुषिको भवान, सबसे पहला कारण ये है कि आप महापौरुषिक हैं, महापुरुष अर्थात भगवान श्री कृष्ण। त्यक्त्वा सुदुश्चल सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैतयेप्सित मन्व धावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में महापुरुष का वर्णन करते हुए दो सुंदर श्लोक आते हैं, महापुरुष अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु। महापौरुषिको भवान, आप महापौरुषिक हैं अर्थात महापुरुष के अधीन हैं, उनकी सेवा में रत हैं, आप भगवान के भक्त हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप भगवान के ऐसे निष्ठावान भक्त हैं, इसीलिए मैं आप पर कृपा करने जा रहा हूं। दूसरी बात, तस्य श्रद्ध दधाम आशु, दूसरी बात यह है कि आपकी भगवान की लीलाओं के प्रति श्रद्धा बहुत है, आप भगवान की हरि कथा में श्रद्धा रखते हो। तस्य श्रद्ध दधाम आशु स्यान् मुकुंदे मतिः सति, और तीसरी बात यह कि आपकी बुद्धि निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी रहती है, आप निरंतर यही विचार करते रहते हो कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा किस तरह की जाए। स्यान् मुकुंदे मतिः सति, आपका नाम तो परीक्षित है, आपने तो माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया, जन्म के पश्चात बाहर निकले छोटे से बच्चे थे तो महल में प्रत्येक व्यक्ति के पास घूम घूम कर जाते थे, उनकी धोती खींच कर देखते थे कि क्या वही सुंदर व्यक्ति है जिसका दर्शन मैंने अपनी माँ के गर्भ में किया, क्या यही मेरा वो मित्र है जिसने मुझे बचाया। इस तरह आप प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा लेते थे, इसीलिए तो आपका नाम परीक्षित है। आप तो माँ के गर्भ से ही स्मरणम में उत्तीर्ण हुए। स्यान् मुकुंदे मतिः सति, तो इन तीन कारणों की वजह से मैं आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाना चाहता हूँ। क्यों? आप सबसे पहले भगवान के उत्तम भक्त हो, भगवान की लीलाओं में आपकी विशेष श्रद्धा है और निरंतर आप भगवान की सेवा में लगे रहना चाहते हो। तो किसी भी व्यक्ति को श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए इन योग्यताओं की कम से कम आवश्यकता होनी चाहिए। तस्य श्रद्धताम आशु स्यान् मुकुंदे मतिः सति, यदि भगवान की लीलाओं में हमारी श्रद्धा नहीं तो श्रीमद् भागवत का संपूर्ण लाभ हमें नहीं मिलेगा। तो कथावाचक को चाहिए कि पूरा ध्यान लगाकर भगवान के विषय में स्मरण करते हुए उपस्थित श्रोताओं को कृष्ण कथा सुनाए, और सभासदों और श्रोताओं का यह कर्तव्य है कि पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाते हुए कथा का श्रवण करें। यदि श्रोता और वक्ता कृष्ण के विषय में अपना पूरा ध्यान केंद्रित न करें तो कथा का पूरा पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता। और इसके विषय में एक छोटी सी कथा महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज ने एक बार कही थी, जो कि काफी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के ही एक गांव में एक भागवत प्रवचक थे, भागवत के ऊपर प्रवचन किया करते थे, वक्ता थे, और वो एक बार एक सप्ताह कर रहे थे। उस समय उस सप्ताह में एक कोने में बैठकर बुढ़िया रोया करती थी, बहुत बूढ़ी औरत थी। जैसे ही कथा आरंभ होती वो रोना आरंभ कर देती, इतनी जोर जोर से रोती, इतनी जोर जोर से रोती कि कथावाचक को भी लगता कि ऐसी क्या बात है कि ये रो रही है, इसके पीछे राज क्या है। और विशेष बात यह थी कि कथावाचक की भी एक रुआबदार दाढ़ी थी और वो बहुत जोश के साथ रोज प्रवचन किया करते। उसे सुनकर बुढ़िया रोज रोती थी। सप्ताह समाप्त हुआ, कथावाचक ने सोचा कि मैं जाकर बुढ़िया से प्रश्न करूं कि इस संपूर्ण सप्ताह में तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई इतना रोया नहीं, आपको मेरी कथा में इतनी उत्तम बात लगी क्या? ये पूछने के लिए वो गए और उनसे कहा कि माताजी जरा बताइए कि ऐसी क्या बात आपको आकर्षित कर गई कि आप इस तरह अनियंत्रित आंसू बहा रहे थे। आपको कौन सा प्रसंग सबसे उत्तम लगा? क्या आप गोपियों का कृष्ण से विरह के विषय में सोचकर रो रहे थे, या यशोदा माता का कृष्ण के प्रति प्रेम को सोचकर रो रहे थे? तो उस बुढ़िया ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो, कौन कृष्ण, कौन गोपी, कौन यशोदा? कथावाचक ने कहा, क्षमा करें लेकिन मैंने शायद आपको रोज रोते हुए देखा। बुढ़िया ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने कृष्ण के विषय में सुना नहीं, आपने इन लीलाओं का वर्णन नहीं सुना, तो आप रो क्यों रही थी? बुढ़िया ने कहा, रे इसके लिए तो बहुत ही सरल उपाय है, सरल उत्तर है, वो ये कि मेरी एक बहुत ही सुंदर और जवान बकरी थी और उस बकरी की भी बड़ी ऐसी ही सुंदर रेशमी दाढ़ी थी और हाल ही में उसकी मृत्यु हुई है और मैं हमेशा उसके विरह में सोचती रहती हूँ। जब आप कथा करते तो आपकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से हिलती थी और वो देखकर मुझे अपनी बकरी याद आती और मैं अपने आप को रोक न सकी और मैं रोती रहती अपनी बकरी को सोच के। इसका कथा से क्या लेना देना? तो कहते हैं कि वो सुन रही थी, श्रवण कर रही थी, लेकिन कथा के उपयुक्त वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकी। तो श्रील प्रभुपाद भी इस कथा को कई बार सुनाते हैं ये बताने के लिए कि श्रोता और वक्ता को अपना संपूर्ण ध्यान भगवान श्री कृष्ण पर ही केंद्रित करना चाहिए और तभी कथा से सबसे उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। यही बात सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, क्योंकि आपकी कृष्ण के ऊपर इतनी श्रद्धा है इसीलिए मैं आपको ये कथा सुना रहा हूँ, अन्यथा दूसरा कोई कारण नहीं। इसलिए हे परीक्षित महाराज, नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण कीजिए, स्मरण कीजिए और उनके नाम का कीर्तन कीजिए। सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे बोलो हरि नाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की कथा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। द्वितीय स्कंद में अनेक बातें बताई गई हैं और विशेष रूप से चतुश्लोकी भागवत का वर्णन है और आज प्रोग्राम के पश्चात चतुश्लोकी भागवत के ऊपर हमने नोट्स तैयार किए हैं तो वो उसे ले सकते हैं भक्तगण और देख सकते हैं, क्योंकि ये विषय इतना गूढ़ है कि बहुत समय हमारा निकल जाएगा और यदि कुछ देर हम चर्चा करें तो ठीक तरह से समझ में नहीं आएगा। तो ये चार श्लोक हैं दूसरे स्कंद के नवे अध्याय के 32वें 33वें 34वें और 35वें श्लोक, इसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत नटशेल भागवतम, जो कि संपूर्ण भागवत का मूल है। इसका आरंभ होता है अहम एवा समेवाग्रे नान्यप यत्सत असपरन, भगवान श्री कृष्ण ही सबके स्रोत हैं। इस तरह चार श्लोक हैं, इसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। जो लोग इसके विषय में और जानना चाहते हैं भागवत के दूसरे स्कंद में देख सकते हैं या फिर आज कार्यक्रम के बाद नोट्स भी ले सकते हैं। तीसरे स्कंद का आरंभ होता है जब विदुर जी उद्धव जी और मैत्रेय आपस में भेंट करते हैं। हम जानते हैं कि विदुर इस भौतिक जगत में यमराज के पद में नियुक्त थे। एक मुनि थे जिनका नाम था मांडव्य मुनि। तो एक बार कुछ राजा के सिपाही उनके आश्रम में घुस आए और उनके आश्रम के अंदर कुछ चोरों को पकड़ लिया और मांडव मुनि पर आरोप लग गया कि आपने इन चोरों को आश्रय दिया है, ऐसा कहके मांडव्य मुनि को सूली पे लटका दिया। मृत्यु के पश्चात यमराज के पास गए, मांडव्य मुनि यमराज से बड़े क्रोधित हुए। यमराज से कहने लगे, मैंने अपना पूरा जीवन इतनी अच्छी तरह से निर्वाह किया, मुझे ये दंड क्यों मिला? यमराज ने कहा कि देखिए मुनिवर, आप जब छोटे बच्चे थे ना, तब आप कुछ एंट चींटियों के साथ खेल रहे थे और चींटियों के साथ खेलते खेलते आपने चींटियों के आंखों को तोड़ डाला था। और क्योंकि आपने दूसरे जीवों पर हिंसा की, इसीलिए आपके जीवन में भी ये विकट परिस्थिति आ गई है। मांडव्य मुनि बड़े क्रोधित हुए। इतनी छोटी सी गलती, वो भी एक छोटे से बच्चे के रूप में था तब की, और इसके लिए मुझे इतना बड़ा दंड। यमराज, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि भविष्य में तुम शूद्र के परिवार में जन्म लोगे। सोचिए मांडव्य मुनि कितने शक्तिशाली होंगे कि यमराज को श्राप दे सके। यमराज को कौन श्राप दे सकता है? यमराज को कोई श्राप नहीं दे सकता, लेकिन मांडव्य मुनि इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने यमराज को ही श्राप दिया। लेकिन आचार्यगण बताते हैं कि ये तो एक बाहरी कारण हो गया। आध्यात्मिक जीवन में एक बाहरी कारण होता है और एक अंदर का कारण होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो वास्तव में यमराज के ऊपर ये श्राप इसलिए लगा क्योंकि भगवान अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को जानते हैं। सोचिए यमराज की क्या सेवा है। यमराज यम लोकों के मैनेजर हैं। यम लोक में कैसे कैसे लोग लाए जाते हैं इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते और कल्पना करनी भी नहीं चाहिए। यमराज अपने यम दूतों के साथ मिलकर यम लोकों में जितने भी लोग आते हैं उनको अलग अलग प्रकार का दंड देते हैं। सोचिए कितने सारे जीवात्मा वहां ऐसी परिस्थिति में आते होंगे। अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन है और उस सब का कार्यभार यमराज को संभालना है। कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई कूद रहा है, किसी की अंतड़ियां निकाली जा रही हैं, देखकर ही आदमी बुरी तरह घबरा जाएगा। ऐसी अवस्था में कोई कृष्ण के विषय में सोच सकता है? कृष्ण के विषय में ऐसी परिस्थिति में स्मरण करना कितना कठिन है। लेकिन यमराज भगवान के इतने शरणागत भक्त हैं कि यमराज ने कहा कि नहीं, मुझे ये सेवा करनी है। तो भगवान ने उनकी इस तीव्र इच्छा को देखकर उन पर कृपा करने का निश्चय किया और भगवान ने सोचा कि चलो भविष्य में हम यमराज को एक मौका देंगे कि वो इस पृथ्वी पर आकर हरि कथा का श्रवण और कीर्तन कर सकें, जिसमें कोई रोक टोक न हो, कोई बीच बीच में उनके ध्यान में, उनके समाधि में रोक टोक न मचाए। और इसीलिए विदुर के रूप में उनको जन्म दिया, जिससे भविष्य में चलकर वो मैत्रेय मुनि के साथ गंगा के तट पर बैठकर आराम से कई दिनों, कई महीनों तक हरि कथा श्रवण और कीर्तन कर सकें। ये भगवान की विशेष कृपा थी यमराज के ऊपर। तो ये असली कारण था कि यमराज के ऊपर ये श्राप क्यों गिरा। तो विदुर जी महाभारत में बहुत ही मुख्य कलाकार हैं, हम सबको पता ही है। धृतराष्ट्र को कई बार उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि अपने निठल्ले दुर्योधन को उठाकर दूर फेंक दो, क्योंकि ये भगवान से द्वेष करता है और हमारी पूरे कुल के नाश का कारण बनेगा। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पूरी तरह अंधे हो गए थे, इसलिए विदुर जी की बातों को उन्होंने अधिक महत्व नहीं दिया। और अंततः जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर धृतराष्ट्र के पास आए और युधिष्ठिर महाराज की ओर से याचना करने लगे कि बस हमें 5 गांव दे दो और कुछ नहीं चाहिए, दुर्योधन सुई की आंख के बराबर जमीन भी देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि यदि हम युधिष्ठिर महाराज को इतनी सी जगह भी देंगे तो युधिष्ठिर महाराज इतने सुंदर रूप से राज्य करेंगे कि विश्व के सारे लोग अपना गांव छोड़कर युधिष्ठिर महाराज के गांव में आना चाहेंगे और सारी भीड़ वहीं आ जाएगी, अतः फिर अपने आप युधिष्ठिर महाराज का राज्य बढ़ जाएगा। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को हम थोड़ी सी भी जमीन नहीं देंगे। तो विदुर कहने लगे, अरे कैसे मूर्ख हो दुर्योधन, जानते नहीं किसके साथ तुम्हारा पाला पड़ा है। पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण है, काल भी जिनके अधीन है। तुम अपनी मृत्यु को तो आता हुआ देखो, अभी भी मौका है, भगवान की शरण ले लो। लेकिन दुर्योधन सुनने के लिए तैयार नहीं था, उल्टे विदुर को ही वो डांटने लगे, कहने लगे, ये बहुत बड़े पाखंडी हैं, विदुर हमारे शत्रु हैं, क्योंकि हमारे शत्रुओं की ओर से ये बात कर रहे हैं, लगता है ये पांडवों के जासूस हैं। इसीलिए पिताश्री हम आपसे निवेदन करते हैं कि इन्हें तुरंत इस महल से उठाकर फेंक दिया जाए और इन्हें अपने साथ केवल अपना श्वास लेके जाने की अनुमति दी जाए और कुछ नहीं। सोचिए दुर्योधन ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। कहा कि उनकी जो मुकुट है, वस्त्र है, आभूषण है, तलवार है, अस्त्र है, शस्त्र है, सब उनसे ले लो और जाए तो केवल जो दो श्वास है, अंदर जाने वाली और बाहर निकलने वाली, उस श्वास के साथ उन्हें इस महल से निकाल दिया जाए। इस तरह विदुर जी के साथ व्यवहार हुआ। सोचिए जिस व्यक्ति ने अपना जीवन हस्तिनापुर के महल में उसके उनके परिस्थिति को सुधारने के लिए लगा दी थी, सेवा के अंत में इस तरह का व्यवहार हो, ये जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। खासकर कलयुग में हम देखते हैं लोगों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब वो जीवन भर एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी या किसी एक विषय की सेवा करते हैं, जीवन भर जी जान लगा के, और 20, 30, 40 साल के पश्चात उनकी सेवा का केंद्र ही उनको लात मारकर भगा देता है, कहता है निकल जाओ। तब हृदय को जो ठेस पहुंचती है उसे संभालना बहुत कठिन है। कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं और जीवन भर मृत्यु तक वो इस अपमान को याद रखते हैं। ऐसा कई बार होता है, किसी व्यक्ति की हम जीवन भर सेवा करें और वही हमें जीवन के अंत में थूक दे, हमारे मुंह पे ही लात मारे, उसके बाद क्या हम शांति के साथ बचे हुए जीवन को बिता सकते हैं? सोचिए विदुर के जीवन में ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन विदुर जी ने क्या किया? विदुर जी ने कहा, नहीं, इस मौके का हमें लाभ उठाना चाहिए, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। भगवान का भक्त प्रत्येक परिस्थिति में अपना लाभ देखता है। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हतापि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद् भक्ता प्रभवोपि। विदुर जी चाहे तो बैठकर शोक मना सकते थे, सोच सकते थे, ओह मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, ये मैंने इनकी सेवा क्यों की, मेरा जीवन व्यर्थ गया। नहीं, विदुर जी ने कहा, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, अभी हमें आगे की सोचनी है। शायद भगवान की यही इच्छा है कि मैं हरि कथा का श्रवण और कीर्तन करूं, चलो शायद ये मेरा अच्छा मौका है, इतने सालों से मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सका, यही मौका है तीर्थ यात्रा पर जाने का। और विदुर जी अकेले ही अपने हाथ में कुछ लिए बिना तीर्थ यात्रा में चले गए। भगवान के भक्त का यही लक्षण होता है, हर परिस्थिति में से वो कोई आध्यात्मिक लाभ ढूंढता है। भौतिक जगत अर्थात हर क्षण में कोई न कोई दुख तो मिलने ही वाला है। अभी जुलाई का सीजन है, क्या हम वर्षा को रोक सकते हैं? क्या हम इंद्रदेव को अपील कर सकते हैं कि आप 10 दिन के लिए, जब तक ये भागवत का पारायण न हो, वर्षा मत कीजिए? ऐसा कर सकते हैं? बल्कि हम तो जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, इससे तो और वर्षा होगी। हम वर्षा के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन अपने आप को बचा सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। अपने हाथ में यदि छतरी हो या कोई रेनकोट हो तो वर्षा से बचाव हो सकता है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जीवन की बुरी परिस्थितियों को रोकने का प्रयास मत करो, क्योंकि वो तो हमारे जीवन में बरसती ही रहेंगी वर्षा की तरह, चाहे कितना भी प्रयास करो। एक समस्या समाप्त हुई यहां से तो दूसरी समस्या यहां से बरसने वाली है, चिंता मत करो। लेकिन अपने हाथ में यदि उपयुक्त छतरी हो, और वो छतरी क्या है, हरि कथा, हरि सेवा और हरि कीर्तन, यही हमारी सुरक्षा का एकमात्र साधन है। अन्यथा समस्याओं की बरसात को हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो भक्त हर समस्या को इस दृष्टिकोण से देखता है कि शायद भगवान की इच्छा है कि मैं उनके प्रति अपनी तीव्रता और बढ़ाऊं। उदाहरण के लिए एक बार एक कंपनी के मैनेजर को, मार्केटिंग मैनेजर था, तो उसे अफ्रीका में भेजा गया। कहा गया कि अफ्रीका में इस देश में आप जूतों की मार्केटिंग करो, जूतों की कंपनी थी। तो बेचारा वो गया, ये सत्य घटना है, ऐसा हुआ था। बाटा कंपनी ने अपने एक मार्केटिंग वाले को भेजा कि जाओ, ये अफ्रीका का बहुत अच्छा प्रदेश है, यहां पर अपने जूतों की मार्केटिंग करो। तो बाटा का वो सदस्य वहां पर गया और उसने देखा कि उस पूरे शहर में कोई जूते ही नहीं पहनता, क्योंकि वो तो पहली बात अफ्रीका हुआ, और वो भी अफ्रीका के दूर दराज इलाके में जंगल के बीचों बीच था। तो उसने तुरंत बाटा कंपनी को एक टेलीग्राम दिया, फैक्स किया या जो भी किया, कि देखो यहां पर तो कोई जूते ही नहीं पहनता, मुझे तुरंत वापस बुला लो, मेरे पास यहां कोई काम ही नहीं है। तो बाटा कंपनी ने कहा कि ठीक है, आ जाओ वापस। दूसरे को भेजा कि जाओ, पहले वाला तो वहां टाटा करके आ गया, अब तुम जाओ और बाटा के नाम को रोशन करो। तो दूसरा गया और उसने जाकर तुरंत वापस बाटा कंपनी को रिपोर्ट भेजा कि देखो बहुत ही बढ़िया जगह है, क्या देश में भेजा है आपने, किसी के पास जूता नहीं, हम पहले व्यक्ति हैं जो यहां पर जूतों की बिक्री करने वाले हैं, मार्केट पूरा खुला है, तो तुरंत जितने जूते हो सके भेजो। परिस्थिति वही थी, देश वही था, व्यक्ति अलग थे और उनकी चेतना अलग थी। उसने कहा ऐसी परिस्थिति इससे अच्छी और कोई नहीं हो सकती। तो वास्तव में देखा जाए जीवन में हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन उन परिस्थितियों के अनुसार अपनी चेतना को बदल सकते हैं। और इसीलिए विदुर जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन उसके बाद भी विदुर जी ने यही निश्चय किया कि चलो मैं गंगा के तट पर बैठकर भागवत कथा सुनूंगा। घूमते घामते प्रभास क्षेत्र गए, प्रभास क्षेत्र से फिर अंततः यमुना के तट पर आए तो वहां उद्धव जी मिले, और उद्धव जी ने विदुर जी को देखकर बड़ा आनंद किया। दोनों ने गले में गले मिलाए और प्रेम की अश्रु धाराएं बहने लगी। विदुर जी ने उद्धव जी से यादवों के विषय में प्रश्न किया। यादवों के विषय में श्रवण कर करके उद्धव जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। वो अपने दिव्य आनंद को रोक नहीं सके और वो कहने लगे कि वास्तव में सारे यादव अब जा चुके हैं, लेकिन जाने के पहले भगवान श्री कृष्ण ने एक वट वृक्ष की ओर दिशा करके मुझे विशेष आदेश दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखों के सामने यादवों को एक दूसरे का संहार करते हुए देखा। उसके पश्चात प्रभास क्षेत्र में ही उस जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। वहां मैं भी उपस्थित था और वहां मैत्रेय मुनि भी उपस्थित थे, और भगवान कृष्ण ने हम दोनों को यह ज्ञान दिया और भगवान से हमने ये ज्ञान ध्यान पूर्वक सुना। सृष्टि के विषय में मैंने कई प्रश्न किए, जीवन के लक्ष्य के विषय में मैंने कई प्रश्न किए और उन सभी का मुझे उपयुक्त उत्तर मिला। मैं पूरी तरह संतुष्ट हुआ। अंततः कृष्ण ने मुझे आदेश दिया कि जाओ बद्रिकाश्रम में, और बद्री का आश्रम में जाकर आप व्यासदेव जी से भेंट करो और उन्हें ये गुप्त संदेश दो। तो उस कार्य से मैं बद्रिक आश्रम की ओर जा रहा हूँ, तो उस समय मैत्रेय मुनि भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर कृष्ण से ही ज्ञान प्राप्त किए थे। तो विदुर जी उद्धव जी से कहने लगे कि जाते जाते कृपा करके मुझे भी वो ज्ञान बताइए ना जो भगवान कृष्ण ने आपको दिया, आप तो भगवान के इतने निकट के पार्षद हैं। तो उद्धव जी ने कहा नहीं, देखिए विदुर जी आपकी उम्र कितनी अधिक है, आप हमसे कितने बड़े हैं, और आपके ही उम्र वाले मैत्रेय मुनि यहाँ कुछ ही दूर गंगा के तट पर हैं। उनकी उपस्थिति में यदि मैं आपको ये कथा सुनाऊं तो ये मर्यादा व्यतिक्रम हो जाएगा, इसीलिए मैं ये कथा आपको नहीं सुना सकता। आपको श्रवण करना हो तो सीधे मैत्रेय मुनि के मुख कमलों से सुनिए। तो विदुर जी सीधा मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे, उन्हें दंडवत किया, मैत्रेय मुनि की स्तुति की और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में प्रश्न किया। वो कहने लगे साशद्ध धानस्य विवर्धमाना विरक्तिम अन्यत्र करोति पुंसाम हरेर पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशुधत्ते। मैत्रेय मुनि से वो आग्रह करने लगे कि कृपा करके हरि कथा सुनाइए, क्योंकि जिस व्यक्ति की हरि कथा के प्रति श्रद्धा क्षण क्षण बढ़ती रहे सा शद्ध धानस्य विवर्धमाना, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, विरक्तम अन्यत्र करोति पुंसान, भौतिक जगत की अन्य बातों से वो विरक्त हो जाता है, चाहे वो समस्याओं के सागर में डुबकी क्यों न लगाता रहे लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से तैरता है। विरक्तिम अन्यत्र करोति पुंसान, जिस व्यक्ति को समुद्र में तैरना आता है उसे क्या समस्या है। हरेर पदानुस्मृति निर्वृतस्य, क्योंकि हरि कथा का श्रवण करते ही हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हैं, और जब कृष्ण के चरण कमलों का हम स्मरण करेंगे तो क्या होगा, समस्त दुख आप्ययम् आशुधत्ते, जीवन में जितने भी दुख हैं वो सब तत्क्षण छू हो जाएंगे, समस्त दुख आप्ययम् आशुधत्ते। तो हमारे जीवन में हम एक पेपर और पेन लेके बैठे तो दुखों की लंबी लिस्ट बनेगी, चाहे तो हम एक पूरी कॉपी भर दें कि मेरे जीवन में क्या क्या दुख हैं, लेकिन ये केवल हमारे साथ नहीं सबके साथ यही हाल है, क्योंकि भौतिक जगत केवल दुखों का सागर है। लेकिन हरि कथा में हमारा मन लगेगा, हरि कीर्तन में हम मन लगाएंगे, कृष्ण के विषय में चर्चाएं करेंगे तो ये सारी समस्त दुख तत्क्षण दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैत्रेय मुनि जी कृपा करके हरि कथा का कीर्तन कीजिए, क्योंकि मैंने संपूर्ण राजमहल को त्याग कर यहाँ मैं आया हूँ, क्योंकि एक दृष्टि से देखा जाए तो विदुर जी का भी राजगद्दी पर हक था, लेकिन फिर भी उन्होंने बैठकर ये नहीं सोचा कि अब मैं यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करता हूँ, देखता हूँ कि कैसे अगला राजा बनता है, मुझे राज्य की गद्दी क्यों नहीं मिलेगी, नहीं, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ त्याग कर वो वन वन भटक रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे, लेकिन जंगलों में भटकने का उद्देश्य क्या था। लोग कहते हैं आप बंबई शहर में भक्ति करते हैं, जंगल वगैरह में जाके भक्ति करेंगे तो और आनंद आएगा, जंगल में जाकर भक्ति करनी चाहिए, वन में जानी चाहिए, ये बंबई शहर में बंगलों में रहकर ऐसे बिल्डिंगों में रहकर भक्ति थोड़ी की जाती है, आध्यात्मिक जीवन अर्थात जंगल में जाना, ये बात तो सही है, लेकिन जंगल में तो वीरप्पन भी रहता है, तो केवल जंगल में रहना कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है, वो तो कई चोर डकैत भी जंगलों का आश्रय लेते हैं और बेचारे ने चार राज्यों के नाक में दम कर दी है, तो जंगल में रहना कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है, क्योंकि बंदर भी जंगल में ही रहते हैं, बंदर भी अपनी लीलाएं कर रहे हैं। और हरि कथा के प्रति हमारी आसक्ति न हो तो जंगल में जाकर हम बंदरों की लीला को ही ज्यादा ध्यान देंगे। इसीलिए केवल वन वन में भटकने से कोई लाभ नहीं। यदि हमें त्याग करना है तो अपनी मिथ्या अहंकार का त्याग करना है और भगवान के भक्तों का आश्रय लेना है। जैसे एक साधु के पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि देखिए स्वामी जी, आप सब कुछ त्याग करके यहाँ पर बैठे हैं, आप कितने बड़े त्यागी हैं। स्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं कोई त्यागी नहीं, महानुभाव आप महात्यागी हैं। उसने कहा, अरे क्या बातें करते हो, मैं तो घर गृहस्थी में फंसा हुआ हूँ, परिवार की इतने उत्तरदायित्व हैं, मैं कहाँ का महात्यागी हुआ। आप त्यागी हैं स्वामी जी, आपने सब कुछ छोड़ दिया। स्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं त्यागी वागी नहीं, आप महात्यागी हैं। उस व्यक्ति ने कहा, आप भी कमाल करते हैं, रोज पैसों के साथ मेरा खेल होता है, पता नहीं कैसे कैसे गलत काम करता हूं, आप त्यागी हैं, आप तो पैसों को स्पर्श भी नहीं करते। स्वामी जी का, नहीं मैं त्यागी नहीं, आप महात्यागी हैं। व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कह रहे हैं। स्वामी जी देखिए, मैं कितने अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता हूँ, कितने बालों का सुंदर सुंदर फैशन करता हूँ, लेकिन आप देखिए, सब कुछ त्याग कर बस एक ही वस्त्र को धारण किए हैं, आप कितने बड़े त्यागी हैं। स्वामी जी ने कहा, नहीं आप महात्यागी हैं। तो बेचारा समझ नहीं सका, ये स्वामी जी बार बार ये क्यों कह रहे हैं। कहा, स्वामी जी आप मुझसे क्या दुश्मनी है, मैं आपकी स्तुति करना चाह रहा हूँ और उल्टे आप मुझे महात्यागी कह रहे हैं, ऐसी क्या बात है। तो स्वामी जी ने कहा, देखो आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने किन वस्तुओं का त्याग किया है, मैंने तो कपड़ों का, बालों का, कुछ अच्छे भोजन का, परिवार के सदस्यों का त्याग किया होगा, लेकिन आपने तो कृष्ण का ही त्याग कर दिया, इसलिए आप महात्यागी हो। तो जो व्यक्ति कृष्ण को त्याग दे उसे कहेंगे ना महात्यागी। तो यदि हमसे कोई पूछे कि आप इतना बड़ा त्याग कैसे कर सके, हमें पूछना चाहिए, नहीं आप इतना महात्याग कैसे कर रहे हो, इसके पीछे राज क्या है। कृष्ण जो कि सर्वगुण संपन्न है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, सर्वशक्तिमान है, लक्ष्मी जी भी जो उनकी चरण की सेवा करना चाहती हैं, उन कृष्ण लक्ष्मीपति को छोड़ दे जो, वो महात्यागी नहीं तो भले क्या है। तो इसीलिए विदुर जी ने राज्य की सारी सुविधाओं का त्याग किया, लेकिन किस लिए, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के संग में बैठकर हरि कथा और हरि कीर्तन कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल जय गिरधारी गोपाल नीताय गौर हरि बोल नीताय गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे अहम हि पृष्टोर्यमण भवद्भि आचक्ष्य आत्मावगमश्च यावान्नभ पतन्ति आत्म समम पतत्रिणस् तथा समम विष्णुगतिम विपश्चित। प्रथम स्कंद में ये वर्णन आता है कि श्रील सूत गोस्वामी सोच रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का किस तरह वर्णन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी तो बहुत ही सीमित शक्ति है और भगवान तो ठहरे अनंत, तो भगवान की लीलाओं का वर्णन कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण इतने अनंत हैं कि सबसे पहले जिस जीव का जन्म हुआ ब्रह्मा जी, वो भी भगवान को पूरी तरह नहीं समझ पाते। तो प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में कि सृष्टि की रचना कैसे होती है, और ये बड़ा ही रोचक और रोमांचक प्रसंग है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आज की तारीख में ये जानना चाहता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और विशेषकर कोई विज्ञान में रुचि रखता हो तो वैज्ञानिकों का अधिकांश समय बस इस विषय पर ही तर्क वितर्क करने में चला जाता है कि सृष्टि आया कैसे। तो कहा जाता है तीसरे स्कंद में कि ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाएं विष्णु के नाभि से निकले कमल के फूल पर उनका जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के निकट के पार्षद बलराम जी, जो कि उनके ही अवतार हैं, बलराम जी से आते हैं चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, और इनसे आते हैं नारायण, और फिर इनसे निकलते हैं द्वितीय संकर्षण वसुदेव संकर्षण द्वितीय चतुर्व्यूह वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध और इनसे फिर आते हैं महाविष्णु। महाविष्णु भौतिक जगत की रचना का कार्यभार संभालते हैं। महाविष्णु कौन है? महाविष्णु कृष्ण के ही एक दूसरे रूप हैं, लेकिन उनका विशेष कार्य है भौतिक सृष्टि की रचना करना। महाविष्णु आराम से लेटकर श्वास अंदर लेते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हैं, और जिस सागर पर वो लेटे रहते हैं उसे कहते हैं कारण सागर। वैसे तीसरे स्कंद में तो इस विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है जो कि हमारे इस चर्चा से परे है, हम इसके विषय में थोड़ी सी ही चर्चा करेंगे। तो कारण सागर में लेटे महाविष्णु के रोम छिद्रों से जब वो श्वास बाहर छोड़ते हैं तो अलग अलग सुंदर ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर उसके सृजन पालन और उनके विनाश के लिए सारी वस्तुएं उपस्थित हैं। महाविष्णु अपने आप को गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में विकसित करते हैं और गर्भोदक्षाय विष्णु गर्भोदक सागर में लेटकर उनकी नाभि से एक कमल के फूल को पैदा कर